जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल
जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतहिष्टवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादांग सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। पिछले कई रविवारों से महाराज निमी और नवयोगेंद्रों के बीच में जो संवाद हुआ जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में पाया जाता है अध्याय 2 से लेकर 5 तक, इसकी चर्चा हो रही थी। कुल मिलाकर 9 प्रश्न महाराज निमी ने किए और एक के बाद एक नवयोगेंद्रों ने इनके उत्तर दिए। 2 प्रश्न और उनके उत्तर क्या थे वो हम सुन चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न महाराज निमि का क्या था, ये इसका वर्णन 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय में आता है। इस तीसरे अध्याय में वैसे तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे प्रश्नों का वर्णन है। आज हम केवल तीसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो आइए श्लोक पाठ करें। ये पहला श्लोक है इस तीसरे अध्याय का। श्री राजोवाच परस्य विष्णुरीशस्य मायि नामपि मोहिनीम् मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। श्रीराजोवाच परस्य विष्णुरीशस्य मायि नामपि मोहिनीम् मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। श्रीराजोवाच परस्य विष्णोरीशस्य मायि नामपि मोहिनीम् मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। बोलिए।
श्रीराजोवाच
परस्य विष्णुरीशस्य
मायि मोहिनीम् वेदितुमिच्छामो
भगवन्तो
ब्रुवन्तु नः।
श्रीराजोवाच
स विष्णुरीशस्य मोहिनी मायामेतुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः।
माताजी
राजोवाच स विष्णोरीशस्य
मायामपि
मोहिनीम् वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। राजोवाच
परस्य विष्णुरीशस्य
मायिनामपि मोहिनीम् मायां वेदितुमिच्छामो
भगवन्तो
ब्रुवन्तु नः।
अनुवाद। राजा निमि ने कहा, अब हम भगवान विष्णु की उस माया के विषय में जानना चाहते हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी मोह लेती है। हे प्रभुओं, कृपा करके हमें इस विषय में बतलाएं। अनुवाद दोहराइए। राजा निमि ने कहा,
अब हम भगवान विष्णु की
उस माया के विषय में
जानना चाहते हैं
जो बड़े बड़े योगियों को भी मोह लेती है। हे प्रभुओं, कृपा करके हमें इस विषय में बतलाएं। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये माया। क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम उसमें पड़े हुए हैं, उसके चंगुल में फंसे हुए हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फंसे हुए तो है ही, जब फंसे हुए हैं तो इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। जब तक जीव इस भौतिक जगत में माया के अधीन रहता है तब तक उसे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में अटक के रहना पड़ता है, जिससे कि तरह तरह के कष्ट होते हैं। तो हम माया में फंसे हैं, माया के कारण तरह तरह के कष्ट हमें झेलने पड़ रहे हैं जबरदस्ती। तो कैसे माया से निकलना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए आता है। परंतु जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा बंधन किस तरह का है, हम मुक्त होने की बात कैसे कर पाएंगे? जब ताला क्या है पता चलेगा, फिर हम चाबी ढूंढेंगे। ताला ही क्या है पता नहीं तो चाबी कहां से ढूंढेंगे? तो किस तरह के बंधन में हम फंसे हुए हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो भगवान की माया शक्ति बहुत प्रबल है। माया भगवान की वो शक्ति है जो सभी को भ्रम में डालती है, सभी को मोह लेती है। इतनी शक्तिशाली है कि जैसे यहां महाराज निमि कहते हैं, बड़े बड़े योगी जन भी मोहित हो जाते हैं भगवान की माया शक्ति में। माई नाम अपि मोहिनी मायाम। माई नाम मतलब जो बहुत बड़े बड़े कवि हैं, दार्शनिक हैं, योगी जन हैं, तपस्वी हैं, अपि मोहिनी उनको भी मोहित कर लेती है। इसलिए ये माया शक्ति के बारे में मैं जानना चाहता हूं। मायाम वेदितुम इच्छामो, कि मैं उस माया शक्ति के बारे में जानना चाहता हूं जो कि भगवान की शक्ति है, जिसके द्वारा बड़े बड़े योगी जन भी मोहित हो जाते हैं। तो हम साधारण व्यक्तियों की बात तो दूर है। वैसे महाराज निमि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी एक राज ऋषि है, राजा होते हुए भी एक संत है, भगवान के बड़े भक्त हैं। अन्यथा ये कैसे संभव हो पाता कि नव योगेंद्र जैसे महाभागवत केवल उनके साथ संवाद करने के लिए दूर सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद आए? इससे पता चलता है कि महाराज निमि बहुत ऊंचे भक्त थे, परंतु भक्त की पहचान होती है कि वो अपने आप को बहुत साधारण समझता है, कभी अपने आप को ऊंचा नहीं समझता। तो महाराज निमि नम्र होने के कारण अपने आप को भी साधारण बद्ध जीवों के समूह में एक मान रहे हैं। और कहते हैं कि जब भगवान विष्णु की माया शक्ति इतनी प्रबल है, बड़े बड़े योगी जन मोहित हो जाते हैं, तो हम लोगों का क्या कहना? तो मैं ये माया शक्ति के बारे में जानना चाहता हूं, ये विष्णु माया क्या है, भगवान कृष्ण अपनी माया शक्ति को कैसे फैलाते हैं? तो ये माया शब्द जो है, इसके दो शब्द होते हैं, मा या। मा मतलब नहीं, या मतलब जो है। तो जो नहीं है वो माया। दूसरे शब्दों में माया वो चीज है जो सत्य नहीं है। जैसे कि जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो ये माया है। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। मैं जब अपने आप को प्रभु समझता हूं तो ये माया है, क्योंकि मैं प्रभु नहीं हूं, मैं केवल दास हूं भगवान का। जब हम समझते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए एक भोगने की वस्तु है या भोगने का स्थान है, तो ये माया है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। ये सृष्टि तो भगवान की शक्ति है, भगवान की संपत्ति है, और एकमात्र भगवान ही हैं जो इस प्रकृति का भोग कर सकते हैं। तो जब हम असत्य में स्थित हो जाते हैं, कुछ एक चीज को दूसरा समझ लेते हैं, तो उसे हम माया कहते हैं। तो ऐसे भ्रम में माया शक्ति ने हम सबको डाल रखा है कि भ्रम में होते हुए भी हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक जो होते हैं, वो तरह तरह के विचार प्रस्तुत करते हैं सारे दुनिया में, बड़े बड़े उपन्यास लिखते हैं, लेख लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, परंतु उनका चित्त भ्रमित हो चुका है भगवान की माया शक्ति द्वारा। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बनता, तब तक वो माया के चंगुल से निकल नहीं सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। वो कहते हैं कि मेरी जो शक्ति माया शक्ति है वो दिव्य है, मेरी दैवी शक्ति है ये, और इसको पार करना बहुत मुश्किल है, प्राय असंभव है। मम माया दुरत्यया, मायाम एताम तरंतिते माम एव ये प्रपद्यन्ते। तो जो व्यक्ति मेरे शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है, केवल वही मेरी इस बहुत ही शक्तिशाली माया को पार कर सकता है। तो ये माया शक्ति हम सबको अज्ञान में और भ्रम में डालती है, भगवान से दूर ले जाती है। और माया इतनी आश्चर्यजनक शक्ति है कि इस बंधन में पड़ने पर भी व्यक्ति अपने आप को मुक्त समझता है, मूर्ख और अज्ञानी होने के बाद भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है, दुख से ग्रस्त होकर तपित होकर भी अपने आप को सुखी समझता है। यह है माया का कमाल। जैसे समझ लीजिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो आके आपको ऐसी चीज बेच डालते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है, और 100 गुना ज्यादा कीमत लेके वो चले जाते हैं, और आप सोचते कि वाह, मैंने कितना अच्छा एक वस्तु लिया, कितने सस्ते में लिया। उस व्यक्ति ने आके हमको मूर्ख बनाया, 1 रुपए का माल है हमको 1000 रुपए में दिया, और हम सोच रहे हैं कि हमने 1000 रुपए का माल, हमने 1 रुपए जो 1000 रुपए का माल हमें 1 रुपए में लिया, हम ऐसे सोचते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान की माया शक्ति ऐसे काम करती है जो तथा कथित बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बड़े से बड़े दार्शनिक हैं, वो भी बिल्कुल भ्रमित हो जाते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े देवता गण भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान की माया शक्ति में। इसलिए अब बहुत उत्सुक है महाराज ने भी जानने के लिए भगवान की माया शक्ति के बारे में। अब जब भगवान के भक्त हैं महाराज निमि, तो उनको माया के बारे में जानने की क्या 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 कारण था? कृष्ण के बारे में जानना चाहिए ना, भगवान की माया शक्ति के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो पिछले 2 अध्यायों में बहुत कुछ भगवान और भगवान की भक्ति के बारे में सुन चुके हैं। 3 तरह के भागवत या वैष्णव कौन होते हैं उनके बारे में भी सुन चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतना सुनने के बाद अब ये कुछ अजीब सा लग रहा है कि महाराज निमि जैसे भक्त अब माया के बारे में पूछने जाएंगे। सारी दुनिया तो माया की चर्चा करती है, टीवी खोल गए, मत खोलिए, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, टीवी खोलिए माया दिखता है, अखबार खोलिए माया है, सड़क में जाइए माया है, जहां भी जाए दुनिया में माया है, चर्चाएं जो चलती हैं लोगों के बीच में माया की चर्चाएं, और अब भागवत खोलते हैं यहां भी माया। परंतु यहां जो माया की चर्चा है वो बाहर की दुनिया में जो माया की चर्चा होती है उससे अलग है। क्यों? क्योंकि यहां जो चर्चा हो रही है माया की, वो भगवान से संबंधित है, एक चमत्कार की भावना है महाराज निमि के हृदय में कि भगवान कितने अद्भुत हैं, कितने चमत्कार की शक्ति भगवान की है। यदि माया शक्ति इतनी चमकाने वाली, मोहित करने वाली शक्ति है तो भगवान कैसे होंगे। तो सृष्टि के गुणों को देख के हम सृष्टिकर्ता के गुणों का अनुमान लगा सकते हैं। सृष्टि इतनी सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे। तो जब भगवान के भक्त माया के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं इत्यादि, तो हमें जानना चाहिए कि उनके हृदय में माया शब्द का संबंध श्री कृष्ण से सदैव रहता है। वो इसलिए माया के बारे में सुनना चाहते हैं क्योंकि ये कृष्ण की शक्ति है। बल्कि बाहर की दुनिया में जो माया की चर्चा होती है उसमें कृष्ण का कोई स्थान नहीं है। एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था मार्कंडेय ऋषि, इनका नाम आप सबने सुना होगा। और ऋषि इन ऋषि की विशेषता ये थी कि इनकी आयु बहुत लंबी थी। 16 मन्वंतरों तक उन्होंने तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु होते हैं, 14 मन्वंतर, और ब्रह्मा जी का एक दिवस इतना लंबा है करोड़ों करोड़ों वर्ष लंबा, और इससे अधिक इनके जीवन की अवधि थी। और 17वें मन्वंतर में भी वो तपस्या अपने बड़े जोरों से और जारी कर रख रहे थे। तब इंद्रदेव बड़े परेशान हो गए क्योंकि जो भी ऐसी तपस्या करता है उसको शक्ति मिल जाती है, फिर वो भी आगे चल के इंद्र बन सकता है। तो इसलिए इंद्रदेव ने सोचा कि इनकी तपस्या को भंग करना चाहिए। तो उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव अपने अप्सराओं के साथ में गए, परंतु वो तो मार्कंडेय ऋषि के ध्यान को बिल्कुल भंग नहीं कर पाए। मार्कंडेय ऋषि वहां बैठे, बद्रिकाश्रम में तपस्या करने लगे, और नर नारायण ऋषि अंततः उनके सामने प्रकट हुए। और भगवान नर नारायण ऋषि ने कहा कि हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, तो बताओ आपको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहते हो आप। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आपका दर्शन हुआ यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। जबकि बड़े बड़े देवता जैसे ब्रह्मा जी शिव जी अपने जीवन को सार्थक मानते हैं केवल आपके चरण कमलों का दर्शन करने से, और अब यहां मुझे तो आपके संपूर्ण शरीर का दर्शन हुआ है, तो मैं कितना भाग्यशाली हूं। तो ये सबसे बड़ा वरदान आपने तो प्रदान कर ही दिया है मुझे, फिर भी जब आप आए हैं सामने और पूछ रहे हैं कि क्या वरदान चाहिए, तो मैं पूछ लेता हूं। तो उन्होंने कहा मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूं, आपकी माया शक्ति का खेल कैसे होता है। तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि नर नारायण ऋषि उनके मुख पे हल्की सी मुस्कान आई, सोच रहे थे अरे रे 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 क्या प्रश्न कर दिया, ठीक है तुम जानना ही चाहते हो तो चलो दिखा देता हूं, लेकिन हाँ बाद में नहीं कहना हमसे, हाँ ठीक है तुम चाहते हो तो मेरे भक्त हैं ये भी ऐसे कभी मेरी माया शक्ति देखना चाहते हैं, लेकिन ये इसमें थोड़ा खतरा होता है। खतरा क्या है, खतरा है कि कहीं माया के की शक्ति को देखते देखते उस भक्त के हृदय में, उस व्यक्ति के हृदय में कहीं माया के प्रति आसक्ति न हो जाए, भगवान की विस्मृति कहीं हो न हो जाए। कई बार भक्त कहते हैं कि मनु में विचार आ सकता है, एक भक्त ने कहा था हम जाके शराब के अड्डे में जाके जो बार होते हैं बंबई में वहां जाके हम प्रचार करना चाहते हैं कि वहां लोग उनके पास पैसा बहुत होता है तो हम किताबें वहां बांटेंगे। हरगिज नहीं जाना वहां। सोचते हो ऐसे माया शक्ति का को देखने जाओगे तो वहां लोग तुम्हें बहा के ले जाएंगे,
क्योंकि वहां की माया शक्ति इतनी प्रबल है, और हो सकता है तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल ना हो। जब भक्ति कमजोर और माया प्रबल, तो फिर माया के अधीन होने की संभावना होती है। ऐसे प्रचार तो नित्यानंद प्रभु कर सकते हैं, वो करते हैं, लेकिन तुम अंदर जाओगे और कुछ हो गया तो, और वो भी यदि किसी ने देख लिया तो फिर सारे भक्त समाज में बात फैलेगा, देखो ये भक्त जो है वहां गए थे। अब किस किस को समझाने जाओगे कि मैं किताब बांटने गया था? कोई विश्वास करेगा कि मैं किताब बांटने के लिए शराब के अड्डे में गया था? इसलिए दूर ही रहो ऐसे लोगों से, ऐसे स्थानों से दूर ही रहना। तो खैर, माया के बारे में ज्यादा जिज्ञासा करना भी अच्छा नहीं है, परंतु मार्कंडेय ऋषि तो कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जब वो ध्यान में बैठते थे, अपने विधि विधानों को भी, अपने साधन भजन को भी भूल जाते थे, क्योंकि वो इतने भगवान के स्मरण में मग्न रहते थे, उनके हृदय में भगवत प्रेम इतना उभर आता था, और भगवान का चिंतन सतत करते रहने के कारण उनकी दैनिक क्रियाओं को वो भूल जाते थे। इतने महान भक्त थे वो। हम लोग जब अपने दैनिक क्रियाओं को, साधन को भूल जाते हैं, भगवत प्रेम के कारण नहीं, माया प्रेम के कारण हो जाते हैं। तो ऐसे महान भक्त मार्कंडेय ऋषि थे, तो ऐसे प्रश्न कर भी सकते हैं वो। तो खैर, भगवान मुस्कुराए और फिर कहने लगे, तथास्तु, ठीक है। फिर वो अदृश्य हो गए। उधर मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में बैठे बैठे अपनी तपस्या जारी रख रहे थे। फिर थोड़े समय बाद ऐसे हुआ कि अचानक आसमान में घने घने बड़े बड़े काले काले बादल आ गए, मूसलधार वर्षा होने लगी। ऐसी वर्षा कि बस इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे मानो कि बड़े बड़े पहाड़ों की जैसे खंभों की तरह बारिश गिर रही है, और बहुत ही जल्दी पानी इतना भर गया भूतल के ऊपर कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। न जमीन कहाँ है, न पहाड़ है, या खेत है, या समुद्र है, सब एक हो गया था। पानी ही पानी, सारे पृथ्वी में केवल पानी फैल गया था। तो उधर उस भयंकर पानी में, प्रलय के जल में, मार्कंडेय ऋषि तैर रहे थे, और उधर भयंकर बड़े बड़े तिमिंगल आदि जो जलचर प्राणी होते हैं, वो भी तैर रहे थे, एक दूसरे को आक्रमण कर रहे थे। और मार्कंडेय ऋषि को पता नहीं चला कि कैसे समय बीतता गया। अनेक वर्ष बीत गए, लाखों लाखों वर्ष बीत गए। मार्कंडेय ऋषि बस उस जल में तैरते गए, कभी होश में कभी बेहोश। उनकी मृत्यु नहीं हुई, तैरते रहे तैरते रहे। उनको पता नहीं चला कि आसमान क्या है, जमीन क्या है, पानी क्या है, कुछ नहीं। ऐसे बहुत समय बीत गया। एक बार अचानक ऐसे पानी में तैरते तैरते उन्होंने थोड़ी दूर पर एक द्वीप देखा, छोटा सा द्वीप। तो द्वीप की ओर चलने लगे। वहां जाकर देखा कि एक वट वृक्ष है, और उस वट वृक्ष के एक पन्ने पर बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य था कि एक छोटा बच्चा है जो दिखने में बहुत सुंदर है, सांवले रंग का है, उसकी आंखें खिले हुए कमल पुष्पों के समान हैं, घुंघराले बाल हैं काले, और उनकी आंखों में एक चमक है, हल्की सी एक मुस्कान है, और वो बच्चा अपने कर कमलों के अंगूठे को, या चरण कमलों के अंगूठे को अपने मुंह में रख रहे हैं, और अपने ही अंगूठे को चूस रहे हैं। बच्चे लोग कभी कभी करते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे होते करते हैं ऐसे कभी, तो ये बच्चा भी कर रहा था। तो मार्कंडेय ऋषि ने सोचा, ये क्या चीज है, ये प्रलय के जल में इतने इतने भयानक हमने प्राणी देखे, तिमिंगल और इस बड़े बड़े जलचर प्राणी, यहाँ ये वटवृक्ष कहाँ से आए, बच्चा कहाँ से आए यहाँ पे? तो आगे चले और फिर बच्चे को देखने के लिए, बच्चा इतना सुंदर था, इतने आकर्षक हो गए और करीब गए देखने को अच्छी तरह से, तो आश्चर्य क्या हुआ कि अचानक वो खींच ले गए और बच्चे के मुंह के अंदर चले गए। बच्चे के मुंह के अंदर जाके अंदर पेट में गए और बच्चे के पेट के अंदर रह के उन्होंने सब कुछ क्या देखा, सारी सृष्टि को देखा, जितने भी लोक हैं, जितने भी ग्रह हैं, जितने पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, गांव हैं, खेत हैं, शहर हैं, सब कुछ देखा। बड़े आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए। थोड़े समय तक वहां रहे और फिर जैसे मच्छर को कभी कभी हम निगल लेते हैं ना, हम जब बात कर रहे हो तो अचानक मच्छर अंदर चले जाता है, खास करके जप करते हरे कृष्ण अचानक चले जाता है। ऐसे हमारे साथ तो हुआ एक दो बार, तो हो जाता है कभी कभी, चलते जा रहे हैं हम तो मच्छर के बारे में सोच नहीं रहे, अचानक कहीं से चले जाता है। तो जैसे मच्छर कभी कभी नाक में मुंह में चले जाता है, वैसे वो उनके नसिकों से वो मुंह से चले गए अंदर, और वैसे जब बच्चे ने सांस बाहर लिया तो बाहर निकल आए। तो जो दृश्य मार्कंडेय ऋषि ने देखा था उसके बारे में एक प्रसिद्ध श्लोक है, बिल्वा मंगल ठाकुर द्वारा विरचित, आपने सुनी होगी श्लोक, सुना होगा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करारविंदेन मतलब अपने करारविंद से, अपने हाथों से, पदारविंदम उन्होंने अपने चरण कमलों को पकड़ा हुआ है, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् और अपने चरण कमलों को, अंगूठे को उन्होंने मुंह में रखा है। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् तो ऐसे एक वट पत्र के ऊपर, वट वृक्ष के पत्र के ऊपर वो शयन कर रहे हैं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि तो ऐसे बाल मुकुंद का मैं स्मरण करता हूं। तो खैर मार्कंडेय ऋषि बाहर आ तो गए और फिर देखा कि ये बच्चा फिर से है, तो अभी बच्चे को के प्रति इतने आकर्षित हो गए कि आलिंगन करने बाहर, वैसे जल से के अंदर रहते हुए बच्चे को आलिंगन करने के लिए गए सामने। लेकिन अचानक उस समय वो वट वृक्ष है वो भी ओझल हो गया, ना वो बच्चा रहा ना वो वृक्ष रहा, और सोचते रह गए मार्कंडेय ऋषि कि वो बच्चा कहाँ गया, वृक्ष कहाँ गया। और उसके बाद तत्क्षण मार्कंडेय ऋषि फिर से अपने आश्रम में बैठे थे, सब कुछ वैसे पहले था वैसे आश्रम में था, कोई प्रलय नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह से भगवान ने अपनी माया शक्ति दिखाई मार्कंडेय ऋषि को, वो जहां अपने स्थान में आश्रम में बैठे थे वहीं पे बैठे रहे। अब देखा कि मैं जहां था वहीं बैठ रहा हूं। तो ऐसे माया शक्ति का प्रदर्शन बहुत जबरदस्त होता है भगवान का। तो जैसे मार्कंडेय ऋषि ने प्रश्न किया था, निमि महाराज ने भी अभी प्रश्न किया, तो और ज्यादा जानकारी जानना चाहते पाना चाहते हैं निमि, क्योंकि पहले हवि बता चुके हैं विष्णु और मायाम इदम पश्यन, कि जो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं वो इस सृष्टि को भगवान की शक्ति समझकर स्वीकार करते हैं, इसलिए सृष्टि में किसी भी चीज को देखकर भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए जब विष्णु माया की बात आई तो अब महाराज निमि उस माया शक्ति के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। और फिर आगे वो बोलते हैं, नानु तृप्य जुषन युष्मद वचो हरि कथामृतम संसार ताप निष्तप्तो निस्तप्तो मर्त्यस्तात तत ताप भेषजम। वो कहते हैं, न अनुतृप्य, आपने जो हरि कथा अभी तक की है उसको सुन के मैं संतुष्ट, मतलब मैं अभी तृप्त नहीं हुआ हूं, मैं और सुनना चाहता हूं। वचो हरि कथामृतम, आपके मुख से हरि के कथा का अमृत निकला है, उससे मैं तृप्त नहीं हुआ हूं, इसलिए मैं और सुनना चाहता हूं आपके मुखारविंद से। क्योंकि ये संसार में ताप बहुत है, संसार ताप, ताप अर्थात कष्ट पीड़ा, निस्तप्तो, निस्तप्त मतलब जो इन तापों के द्वारा बहुत पीड़ित है, मर्त्यः, मर्त्यः मतलब इस मर्त्यलोक में पृथ्वी लोक में जन्म लेने वाला आदमी, निस्तप्तः, हम सब निस्तप्तः हैं, हम सब तपे हुए हैं, तपित अवस्था में है। संसार के जो कष्ट हैं उनको त्रिविध ताप कहते हैं शास्त्रों में, तीन प्रकार के ऐसे ताप या कष्ट होते हैं। आध्यात्मिक क्लेश जो हमारे मन और शरीर से उत्पन्न होते हैं, अधिभौतिक क्लेश जो अन्य प्राणियों के द्वारा हमें कष्ट मिलता है, और अधिदैविक क्लेश जो कि देवताओं के द्वारा या निसर्ग के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो इनको त्रिविध ताप कहते हैं, इनके द्वारा हम सभी लोग तपित हैं। एक बार एक भक्त हमसे मिले, बड़े परेशान थे, तरह तरह की समस्या उनके जीवन में थी, तो कह रहे थे मैं तो पक गया हूं, पक नहीं गया मैं तल गया हूं, उबल गया हूं। फिर अपने समस्याओं के बारे में बता रहे थे। मैंने बोला ये तो ये भौतिक जगत है ना, बहुत बड़ा तवा है, इस माया के तेल में सभी लोग तले जा रहे हैं, से जलेबी समोसा तलता है वैसे, लेकिन ऐसे भजी के समान हमें तलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आप को सुखी समझ रहे हैं। कम से कम तुम भाग्यशाली हो, समझते हो कि तुम तल रहे हो, उबल रहे हो, जो भी हो, पके हुए हो। कहने लगा मैं हैरान हो गया जीवन से, पक गया मैं बिल्कुल। मैंने कहा सबकी हालत ऐसे है, चिंता नहीं करो, एक तवे में हम सब बैठे हुए हैं। लेकिन भक्तों की बात क्या है, तवे के बीच में तेल होता है ना, तो भक्त जो होते हैं तेल से निकल के थोड़े कोने में जाते ऊपर, तो गर्मी तो आती है लेकिन कम से कम उतना नहीं, तो कम से कम ऊपर किनारे में जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी गर्मी नीचे से आती है, लेकिन जो लोग तल रहे होते हैं उनकी तरह नहीं। उसी तरह से और एक उदाहरण भौतिक जगत के बारे में दिया जाता है, वो चक्की की। चक्की में पिसाई होती है, तो यहां हर एक प्राणी की पिसाई हो रही है, जैसे चटनी बनती है ना, पिसाई हो रही है। लेकिन जो भक्त हैं वो पीसते पीसते ऊपर कोने में जो है, जो बताओ चटनी रहता है ना, वो वहां है, ताकि पिसाई उतनी नहीं होती। तो सब तप रहे हैं, सभी लोग पक रहे हैं, सभी लोग तल रहे हैं, दुनिया में सभी की हालत ऐसी है। तो इसके लिए उपाय क्या है, संसार ताप निस्तप्त तो मरते हैं ताप भेषजम, तो ऐसे ताप के लिए, ऐसे कष्टों के लिए भेषजम, भेषजम अर्थात औषधि। ये औषधि क्या है, हरि कथामृतम, हरि कथा का अमृत, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण उपदेश हमें सुनते रहना चाहिए, जिससे हमारे हृदय में जो कुछ है, जो सब कष्ट है, तनाव है, वो सब मिट जाएगा। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में गोपी गीत आता है, आप सबने ये प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जनाः। गोपियां श्री कृष्ण को कह रही हैं, तव मतलब आपकी कथामृतम, आपकी जो कथा का अमृत है वो क्या है? तप्त जीवनम। जो तप्त लोग हैं, जो तल रहे हैं, उबल रहे हैं, पक रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का प्राण है, जीवन है। इसलिए जो व्यक्ति उस तवे के कम से कम तेल में से निकलना चाहता है, उसे चाहिए कि वो इस कथा के अमृत का पान करे, क्योंकि ये तप्त जीवनम है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभि रीडितम। जो बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं, बड़े बड़े भक्त होते हैं, उनके द्वारा ये वर्णित है। ऐसे बड़े बड़े भक्त वर्णन करते हैं कृष्ण कथा का। कल्मशाप हम, जो कल्मश है हमारे हृदय में, जो अनर्थ है, गंदगी है हृदय में, आप हम उसको निकाल देती है ये कृष्ण कथा। सुनने से हमारा हृदय बिल्कुल साफ हो जाता है। साथ साथ में श्रीमद आततम, ये बहुत शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली है कि ये आध्यात्मिक शक्ति के परे और कुछ नहीं है, इसलिए सारे दुनिया में फैलाया जाता है ये। भूवि गृणन्ति ये भूरिधा जनाः। और जो लोग इसका वर्णन करते हैं वो सबसे कृपालु होते हैं, क्योंकि सबके हृदय की पीड़ा को वो शांत करते हैं। तो वास्तविक उपाय दुनिया में यही है, सभी लोग कृष्ण कथा, कृष्ण नाम का आश्रय लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महाराज निमी इतना कुछ सुन चुके हैं नवयोगेंद्रों से, लेकिन कहते हैं मैं अभी तृप्त नहीं हुआ, मैं और सुनना चाहता हूं। ये सच्चे भक्त का लक्षण होता है, वो कृष्ण कथा, कृष्ण नाम और सुनना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा रुचि हो जाती है उनमें। श्रीमद् भागवत में जो नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए सब ऋषि गण हैं, वो सूत गोस्वामी से कहते हैं, वयम तुन वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। वो कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, आप जो कृष्ण कथा का वर्णन कर रहे हैं, रुकिए मत, आप करते रहिए, वर्णन करते रहिए। वयम तुन वितृप्याम, हम थके हुए नहीं है लेकिन हम तृप्त भी नहीं है, हम और चाहते हैं। उत्तम श्लोक विक्रमे, कृष्ण जो इनका नाम है उत्तम श्लोक, इनकी लीलाओं का वर्णन करते करते हम बहुत सुख पा रहे हैं। श्रृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, जैसे जैसे आप वर्णन करते रहते हैं वैसे हर पद हमें नया स्वाद मिलता है, दिव्य आनंद का अनुभव होता है। तो ऐसे है कृष्ण कथा। तो खैर, ऐसे महाराज निमी का प्रश्न है, ये भी विषय बहुत लंबा है कि भगवान की हरि कथा अमृत के समान कैसे है, जगह जगह शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो माया का उपाय एक ही है और वो है हरि कथा, हरि नाम। यदि हम दृढ़ता से श्रद्धा पूर्वक भगवान के भक्तों के संग में आकर केवल सुनते रहें कथा, भले बीच बीच में सो भी जाएं, लेकिन आए, ना सो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी जो भी हो हम आए और सुने और कीर्तन और जप भक्तों के संग में करें, ये माया के लिए औषधि है, सबसे अच्छी दवाई है। तो खैर, क्योंकि अभी विषय काफी लंबा है, तीसरे प्रश्न का उत्तर हमें समाप्त करना है, यहां भी उत्तर शुरू भी नहीं किया। तो अंतरिक्ष, अब जो तीसरे योगेंद्र हैं, अब वो जवाब देना शुरू करते हैं। और इस अध्याय में तीसरे श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक वो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। अंतरिक्ष मुनि वो कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान जो कि अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, उन्होंने हर एक बद्ध जीव को यहां भौतिक सृष्टि में भेजकर अच्छे बुरे कार्यों को अच्छे बुरे जो ऊंचे नीचे योनियां हैं उनमें स्थित करा दिया, उनको स्वतंत्रता दे दी, जिससे कि वो या तो इंद्रिय तृप्ति के पथ में, भोग के पथ में चलें, या तो वो मुक्ति या मोक्ष के पथ में चलें। वो हर एक बद्ध जीव को चयन करना है अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग या दुरुपयोग करके। इस तरह भगवान किसी जीव के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि महाराज निमि को उत्तर देते समय अंतरिक्ष मुनि अब इस माया शक्ति के तीन गुणों का उल्लेख कर रहे हैं, सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण। जैसा कि आपको पता है, ये प्रकृति गुणमयी प्रकृति है, अर्थात तीन गुणों से बनी हुई है, ये सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण। तो हम सब इन तीन गुणों के अधीन हैं, और तरह तरह के प्राणी, चाहे वो देवलोक के निवासी हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे मनुष्य योनि से भी निम्न श्रेणी के प्राणी हों, वो सब अलग अलग गुणों के अधीन हैं, इसलिए विविधता इतनी है। तो दुनिया में विविधता क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि ये तीन गुण जो हैं, सत्व, रजस, तमस, इनका प्रभाव अलग 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 पड़ रहा है। इसलिए कोई प्राणी है, जैसे बंदर है, उसके कोई विशेष गुण होते हैं, जो कबूतर है उसके कोई विशेष गुण होते हैं, जो भालू होता है वो तो बहुत लंबे समय तक सो सकता है, जो शेर है वो बहुत कुछ खा सकता है, मांसाहार यदि बहुत कर सकता है, तो ऐसे तरह तरह के गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। उसी तरह से मनुष्य है, उसका मस्तिष्क जो है, जो दिमाग है, वो सारे योनियों में से सबसे बड़ा है। दुर्भाग्य है सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है, वो दूसरी बात है, लेकिन मनुष्य भी पशुओं की तरह ही बनना चाहता है। जो गुण प्रकृति ने पशुओं को दिए हैं वो थोड़े बहुत मनुष्य में हैं भी, लेकिन मनुष्यों में जो बड़ा दिमाग है उसको ज्यादा इस्तेमाल करने के बजाय जो अन्य चीजें हैं जो प्रकृति ने पशुओं को दिए हैं उनका इस्तेमाल करके वो पशुओं की तरह रहना चाहता है। ये दुर्भाग्य की बात है। मनुष्य के दिमाग का प्रयोग होना चाहिए भगवान को जानने के लिए। महाराज निमि जैसे सवाल कर रहे हैं वैसे सवाल करने के लिए, और उन उत्तरों को, जवाब को सुनने के लिए। तो खैर, ये सारी विविधता जितनी भी है वो केवल तीन गुणों के कमाल के कारण है। तो भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है? क्योंकि जो बद्ध जीव यहां भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं उनके लिए बनाया है। और दो रास्ते हैं, इंद्र तृप्ति का रास्ता या भगवत भक्ति का रास्ता। हम में से हर एक व्यक्ति को चुनना है कि हमें क्या, कौन सा रास्ता चाहिए। वैसे इंद्र तृप्ति का अवसर क्यों प्रदान किया है भगवान ने यहां जीवों को? क्योंकि इंद्र तृप्ति कर करके जब व्यक्ति उब जाएगा, जब समझ पाएगा कि इंद्र तृप्ति से संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, केवल भगवत भक्ति ही एकमात्र उपाय है, तब उसके जीवन में मोड़ आएगा, तब वो भगवत भक्ति करने लगेगा और फिर भगवान के धाम की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिए सृष्टि के सृजन के लिए के पीछे एक ही कारण है, और वो है कि यहाँ के बद्ध जीवों को भगवान के धाम में जाने के लिए एक अवसर है, एक मौका है, एक सुविधा है। फिर आगे अंतरिक्ष मुनि बताते हैं कि वही परमात्मा, वही भगवान अब इस बद्ध जीव के इंद्रियों को क्रियाशील बनाते हैं, मन को, बुद्धि को उत्तेजित करते हैं, जिसके कारण अब वो बद्ध जीव अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है। फिर बद्ध जीव यहां अपने आप को शरीर समझने लगता है और ऐसे माया के अधीन हो जाता है। कभी उसे देवलोक देवता का शरीर मिलता है, कभी मनुष्य का, कभी कीड़े का, कभी पेड़ का, ऐसे 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करते रहता है, क्योंकि उसके हृदय में बहुत गहराई से जड़ पकड़े हुए हैं भौतिक भोग वासनाओं का, इसलिए कभी इस तरह से भोग करता है, कभी उस तरह से भोग करता है, और जैसे जैसे वो भोग करता है वैसे वैसे उसको कर्मों के फल मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर जैर्गुणे कारणम गुण संगोस्य सदसत योनि जन्मसु, कि जब जीव पुरुष या भोक्ता होने का प्रयास करता है, प्रकृति को भोगने का प्रयास करता है, तो उसे सत असत योनि, कभी ऊंचे योनि कभी निम्न श्रेणी के योनि, इनमें जन्म लेना पड़ता है। और आगे परमात्मा उनका साथ देते हैं, ठीक है तुम्हारी इच्छा है भोग करने के लिए, चलो भोग करो, लेकिन तलोगे पकोगे ये सब याद रखना। समोसा बन जाओगे, कभी जलेबी बन जाओगे, और फिर ये बद्ध जीव बार बार जन्म मृत्यु का सामना कर करके निराश होकर हताश होकर कभी इस परिस्थिति में तो कभी उस परिस्थिति में, इस लोक में तो उस लोक में, कभी इस योनि में तो उस योनि में, ऐसे अनादि काल से भ्रमण करते आया है। और जब सृष्टि के विनाश का समय आ जाता है तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने काल रूप में अब सारे सृष्टि को अपने अंदर समेटने की तैयारी करते हैं। तो जैसे माया के पदार्थ क्रमशः एक के बाद एक सृजित हुए थे, वैसे अभी सृष्टि के विनाश के समय बिल्कुल उल्टा होता है, और एक के बाद एक जितने भी पदार्थ हैं वो सब गायब होने लगते हैं, और फिर सारी चीजें महत्तत्व में आती हैं, और फिर वो सारी सृष्टि अव्यक्त हो रूप में रह जाती है, और सारे जीव फिर भगवान में विश्राम करते हैं जब तक कि दोबारा भगवान सृष्टि का सृजन नहीं करते हैं। इस फिर उसके पहले क्या होता है कि गर्मी बढ़ने लगती है, इतनी गर्मी बढ़ती है कि सभी लोग सूख जाते हैं। 100 वर्षों तक ऐसी भयानक गर्मी होती है कि कोई प्राणी जीवित नहीं रहता है, और उसके बाद 100 सालों तक भीषण वर्षा होती है, और इसके बाद फिर भगवान सारी सृष्टि को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो ये माया का खेल है, पहले भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं, थोड़े समय के लिए पालन करते हैं, पालन करते समय सारे बद्ध जीवों को बांध के रखते हैं अपनी माया शक्ति में, फिर सृष्टि का विनाश होता है तो अपने आप में सब समेट लेते हैं, पुनः सृष्टि का सृजन करते हैं, यही सब चलते रहता है, यही है माया का खेल। जैसे मकड़ी अपने जाल को फैलाती है, एक मक्खी या मच्छर उसमें अटक जाती है, उसी तरह से ये बद्ध जीव भगवान के माया जाल में अटक के पड़े हैं। अब हमें इस माया जाल से निकलना है। तो अंतरिक्ष मुनि कहते हैं कि हे राजन, अब मैंने माया का वर्णन तो कर दिया, अब और क्या जानना चाहते हो, पूछो। अंतरिक्ष मुनि कहना चाह रहे हैं कि ठीक है माया क्या चीज है तुम सुन चुके हो, लेकिन माया के बाहर कैसे निकलना है ये नहीं जानना चाहते हो, उसके बारे में तो पूछना चाहिए ना। इसलिए आगे चल के फिर महाराज निमि ऐसे ही प्रश्न करने वाले हैं। तो ये तीसरे प्रश्न का सार है कि महाराज निमि पूछ रहे हैं कि विष्णु माया क्या है, और अंतरिक्ष मुनि बताते हैं कि भगवान की सृष्टि है, त्रिगुणमयी सृष्टि है जो कि सारे जीवों को बद्ध अवस्था में रखती है। भगवान परमात्मा रूप में अपने काल शक्ति के रूप में सारे सृष्टि को चलाते हैं, जीवों को अच्छे बुरे कार्यों में लगाते हैं, ऊंचे नीचे योनियों में स्थित कराते हैं, और फिर सृष्टि का संहार हो जाता है। बस यही माया का खेल है, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कवि ने कहा है प्रेम की भावना में कि भगवान एक ऐसे कुम्हार की तरह है जो मिट्टी से मटके को बनाते हैं, मटके को तोड़ देते हैं, फिर से बनाते हैं, फिर से तोड़ देते हैं। तो ऐसे भगवान भी सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, फिर से ये चक्र निरंतर चलते रहता है। तो इस चक्र से छूटना हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमें कहना चाहिए बहुत हो गया, अभी और पकना तलना उबलना नहीं है, हमें भगवान के पास जाना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। कि हे प्रभु, ये संसार आपका बड़ा कष्टदायक है, तौबा तौबा अभी हमको और नहीं चाहिए। फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, बहुत हो गया। इसलिए हमारी रक्षा कीजिए, हमें इस भवसागर से उठा के अपने चरण कमलों में रखिए, अपने धाम में ले जाइए। और ऐसे हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उनके पवित्र नामों का आश्रय लेना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं, या एक प्रश्न है कि ऐसे कहा गया है कि भगवान के अतिरिक्त किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तो हर जो भी कुछ है उसका संबंध हमें भगवान से देखना चाहिए, फिर भी हम माया में क्यों गिरते हैं? क्योंकि हम संबंध नहीं देखते भगवान से, इसलिए माया में गिरते हैं। जब किसी चीज को भगवान से स्वतंत्र समझते हैं तब वो माया है। जब किसी